हमने बहुत कुछ सुना हुआ इधर उधर से, लेकिन जब एक सीक्वेंस में सुनते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। तो लिहाजा आइए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि बरजखी जिंदगी में ये रूह और बदन का क्या ताल्लुक है। ये भी एक बहुत अहम सवाल है। आप देखिए कि इस वक्त मैं क्या हूँ, जैसे आप कहते हैं ना मैं, मेरा नाम, आप अपना नाम कहते हैं, मैं कहती हूँ मेरा नाम इफ्फत है। जब ये मैं कहती हूँ ना मेरा, ये मेरी किताब है, ये मेरा फोन है फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैं कहती हूँ ना मैं, तो इस मैं का मतलब है मेरा ये जिस्म जिसको आप भी देख रहे हैं किसी हद तक, मुझे भी आपका दिख रहा है, और दूसरी चीज मेरी रूह। मैं इज इक्वल टू बॉडी एंड सोल। मौत के वक्त इंसान की रूह उसके बदन से निकाल ली जाती है, तो मैं मैयत में ढल जाऊंगी। यानी मेरे और मैयत के लफ्ज के बीच में ये रूह है। देखिए ये मैं अक्सर मिसाल देती हूँ, छेड़ के दिखाती हूँ, अल्लाह ना करे गड़बड़ हो जाए। ये माइक है ना, आवाज आपको आ रही है, ये काले रंग का है, लंबी सी डंडी है, गूस इसकी नेक है। अब ये शक्ल इसकी काली हो, लाल हो, वाइट हो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, अब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, ये देखिए मैंने सिर्फ एक बटन दबाया तो इसकी रूह खत्म हो गई। इसमें दौड़ने वाली बिजली इसकी रूह है। ये माइक मेरे सामने क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इस बिजली और इस पूरी इलेक्ट्रिक जो भी इसकी एक्टिविटीज की वजह से ये मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है। बस ये है मैं और आप। अल्लाह ने एक कुन कहना है और आपकी मेरी रूह निकल जानी है। तो मौत के वक्त इंसान की रूह उसके बदन से निकाल दी जाती है, जैसे मैंने अभी बटन बंद करके इस माइक की रूह निकालने की कोशिश की। फिर बाद में जब ये कब्र में पहुंचता है, तो अल्लाह के हुक्म से रूह फिर इसके बदन में लौटाई जाती है। ये टॉपिक हमने मौत के सफर में भी हदीस पढ़ी है, अभी भी सुनाती हूँ आपको। मैं गई, मेरी मौत हो गई, फिर जब लोगों ने मुझे कफनाया, दफनाया, मैं कब्र में डाल दिया, हमारा ईमान है कि जिस्म में रूह डाली जाती है। यहाँ एक छोटी सी बात नोट करें, इस वक्त का एक बहुत बड़ा फितना इनकारे हदीस कब्र के अजाब को नहीं मानता, क्योंकि उसमें लॉजिक्स बहुत सारी लोग ले लेते हैं। हमारा ईमान है कि जिस्म में रूह डाली जाती है। फिर तीन सवाल किए जाते हैं, ये सारा इस पिछले लेक्चर में हो चुका है। मन रब्बू का, मन रसूलू का और मन दीनू का। इसको असूले सलासा भी कहते हैं, पूरी हमने ये बुक पढ़ी हुई है, पाकिस्तान में लाहौर से कोर्स कराया था, असूले सलासा, कब्र के बुनियादी सवाल, यही है जिसको कहते हैं कब्र के तीन सवाल। अगर वो इनमें कामयाब होता है तो उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, उसे किसी तरह की कोई परेशानी और तकलीफ का सामना नहीं होता। और तस्वीर का दूसरा रुख भी है, अगर वो काफिर है, फाजिर है, तो उसके लिए जहन्नम की तरफ से खिड़की खोली जाती है, कब्र तंग की जाती है, तरह तरह की सजाएं दी जाती हैं। अब अगला सवाल ये है कि कब्र में अगर राहत है या अजाब, तो क्या ये जिस्म को है कि रूह को है? ये भी एक बहुत लंबा सवाल चौड़ा करते हैं लोग। तो इसके बारे में नंबर एक तो याद रखिए, कुरान और हदीस में दो टोक अंदाज में तो नहीं कहा गया कुछ, लेकिन ये पता चलता है कि ये सजा रूह को मिलती है। बास जगह से ये भी मिलता है कि ये बदन के साथ होता है, बास से ये लगता है बदन और रूह को। तो उलमा ने तीन किस्म की राय का इजहार किया है, कौन सी बेहतर, क्या नहीं, किस तरह, इसके ऊपर जब सारों को जमा करूं तो याद रखिए कि ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज है। कुछ की सिर्फ रूह को होता है, कुछ मामला ऐसे होंगे, कुछ के सिर्फ बदन को हो सकता है, और कुछ को रूह और बदन दोनों में हो सकता है। हमें इसके बारे में बस यही की दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। बस बदन को के रूह को आपको डरावना ख्वाब देखते हैं तो क्या होता है कि उस ख्वाब में तो आप डर ही रहे होते हैं ना, उठेंगे तो पसीना आया होगा, घबरा रहे, उससे कोई फर्क पड़ता है कि आपके जिस्म पे कुछ तकलीफ थी या रूह पे थी? आपको कोई अल्लाह ना करे सर में दर्द हो जाए, जिनको होता है अल्लाह उनका दूर करे, बस सब बेचैन होते हैं। तो लिहाजा ये जो बात अहले सुन्नत वल जमात ने कहा कि वो कजालिक अजाब बिल कब्री यकून लिन्नफ्सी वल बदनी जमीयन बी इत्तफाक अहले सुन्न वल जमात, अहले सुन्ना और जमात, अहले सुन्ना और जमात में आज के अहले सुन्ना वाल जमात नहीं है, यानी सलफ सालहीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के जो सारे स्कॉलर्स थे वो कहते हैं कि अजाब कब्र का ताल्लुक रूह और जिस्म दोनों के साथ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे कई सवालों का जवाब मिल गया। अब अगला एक सवाल जो बहुत अहम है, ये मरने के बाद रूह कहाँ जाती है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये रूह कहाँ जाती है, जैसा कि हमने पीछे बात की कि मरने के बाद रूह का ताल्लुक दुनिया से ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। ये कहाँ जाती है इसके बारे में कुरान ने कोई वाज़े जगह नहीं दी। अहादीस में हमें ये पता चलता है कि मुख्तलिफ लोगों की रूहें मुख्तलिफ जगहों पे रखी जाती हैं। मसलन जैसे आप सिज्जीन, इल्लीयीन, गुनाहगार बदकारों की रूहें सिज्जीन ज़मीन के अंदर गढ़ों में एक दफ्तर है, और इल्लीयीन आसमानों पे है। अगर इस पे आप मज़ीद पढ़ना चाहें तो अकीदा तहाविया बहुत मशहूर किताब है, शरह तहाविया, उसको पढ़ लें आपको मिलेगा। लेकिन मैं तो आपके सामने इस लेक्चर में ये रखूँगी कि चूंकि आज का हमारा टॉपिक कब्र से मुतल्लिक है, तो कब्र क्या है, शायद आज हम इस दुनिया में रहते हुए उसके बारे में जानकर कब्र की हौलनाकियों और उसकी तारीकियों को जानने के बाद वो खौफ महसूस कर सकें जो दिन ब दिन कम हो रहा है। हरम में, मस्जिद नबवी में लोगों को ताश के पत्ते मैंने फोन पे खेलते देखा, हतीम के दरवाजे पे जहां से लोगों को मैनेज करना है बंदा बैठा फोन पे ताश खेल रहा है, और किसी ने उसको कहा कि इतना खेला हाजल हदीस उसकुरुल्लाह, अरबी में वो कह रहे हैं कि ज़िक्रतुल्लाह ही फी नफ्सी, मैं अपने दिल में अल्लाह को याद करता हूँ, मुझे इधर ज़रूरत नहीं है। यानी अल्लाह के नबी की वो हदीस के एक वक्त आएगा पूरी मस्जिद में कोई एक भी साहिबे खुशु बंदा नहीं होगा। आज आपको ये चीज़ें मस्जिदों तो छोड़ें हरम में भी फील होती है, दुनियादारियाँ दुनिया की चीज़ें कितना कुछ हो गए। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब कभी कब्र के पास खड़े होते इस कदर होते कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती। आपसे कहा गया कि जन्नत और जहन्नुम का जिक्र किया जाए तो आप इतना नहीं रोते जिस तरह कब्र को याद करके रोते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा फइन नजा मिनहु फमा बादहु अयसरु मिनहु वइन लम युनजा मिनहु फमा बादहु अशद्द मिनहु क़ाल वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु मंज़रन क़त्तुन इल्ला वल क़ब्रु अफ़दौ मिनहु। बेशक कब्र आख़िरत की घाटियों में से घाटी है, अगर कोई शख्स इसमें कामयाब हो गया तो इसके बाद वाली घाटी से ज़्यादा आसान होगी, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो इसके बाद वाली घाटी से ज़्यादा सख्त होगी। फिर हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने कब्र से ज़्यादा वहशतनाक मंज़र कोई नहीं देखा। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 2308। तो पहली बात है कि उस्मान गनी, इन पे तो मैं अगर जो अभी देख के आई हूँ इनकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें बयान करूँ तो आपको हैरान होंगे कि इतनी नेकियां करने वाले उस्मान कब्र का जिक्र सुनकर रोते हैं। मुझे आपको क्या फिक्र हो, उस्मान गनी ने ज़िंदगी में अपने अकाउंट्स खोले, आज भी उस्मान गनी के नाम का बैंक अकाउंट सऊदी बैंक में मौजूद है। आप मस्जिद नबी में बिल्कुल मिडल डोर जो है उनका 377, उससे जब बाहर निकलते हैं तो आपको अपने लेफ्ट साइड पे हिल्टन दिखता है, हिल्टन से दूसरी तरफ आप देखें तो उस बिल्डिंग पे क्या लिखा हुआ है, वक्फ लिल उस्मान गनी उस्मान बिन अफ़ान रदिल्ला। इस वक्त हरम की जो तौसी है ना एक्सपेंशन, उसमें एक बड़ा हिस्सा आज भी उस्मान गनी के नाम का है। हम एक उमरा ट्रिप लेकर आए थे इस बार नूरुल कुरान के थ्रू, वर्ल्ड वाइड हो गया अनाउंस, तो हमने अमेरिका से किया था रमज़ान में 24 में, तो माशाल्लाह हर मुल्क से कुछ ना कुछ लोग जमा हुए। तो ये 22 नवंबर से 30 नवंबर तक 8 दिन का था। उम्रा क्या था, इल्म और उम्रा था। कभी ज़िंदगी में आपको नूरुल कुरान से प्लेटफॉर्म से कोई उम्रा का ट्रिप मिला ज्वाइन कीजिए, लग्जरियस भी कह लूँ क्योंकि बाहर के लोग होते हैं, कुर्बत होती है, अच्छे होटल, बेहतरीन होटल। और दूसरी जो बात है, हमने 2 दिन में मक्की दौर का खुलासा किया है। होटल में जगह लेकर वहाँ बस के जरिए लोगों को लेकर जाते थे, फिर जिस जगह ठहरे हुए थे वहाँ हमारी क्लासेस हुई, और इसी तरह मदीना में 2 दिन में मदनी दौर का खुलासा तो हुआ। लेकिन जो बात अभी बता रही हूँ, जो ज्यारतें और एक्टिविटीज थी, तो उसमें हमने उस्मान गनी के बाग की ज्यारत की। आज भी मदीना में वो बाग है, उसकी खजूरें हैं, और वो खजूर जब बिकती है ना, तो उसका जो प्रॉफिट है वो उस्मान गनी के अकाउंट में जाकर हरम में जाता है। वो नेकियां की, ये नेकियां कीजिए, जो मैं सूरह 3 की आयत पढ़ती ना जब भी कभी नमाज में, के वाला हूँ अजरुन गैरु ममनून। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि कौन खुशकिस्मत है जिसका अजर उसके बाद भी जाए। गैरु ममनून मुझे कैसे लगता है, आप एक मिरर लेके उसके सामने एक और मिरर रखें तो आपको तो क्या दिखेगा, उसके इमेज में मिरर्स की लाइनें ही होंगी। जिंदगी में वो नेकी कीजिए जो आपके बाद रहे। पिछले साल जब पाकिस्तान आए, वही ट्रिप जिसमें आप लोगों के साथ उमरा किया था, तो मैंने कह कर अपने नाम से एक अकाउंट खुलवाया, और वो दिन से आज तक वो अकाउंट स्कूल के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम ओवरसीज हैं, हमारे लिए कई चीज़ें सहूलत की हैं, तो स्कूल के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने कभी अपना नाम नहीं दिया किसी जगह। लेकिन एक तो ख्वाहिश थी कि उस्माने गनी की तरह, और अल्लाह करे जब मेरी डेथ हो तो पाकिस्तान हुकूमत को ना पता चले और वो अकाउंट ना ख़त्म हो। कभी ज़रूरत होती है उसी में पैसे मंगवा कर, मेरे पास उसका एक्सेस है भी तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं खोला, मुझे पता भी नहीं कैसे खोलते हैं, लेकिन वो स्कूल के लिए यूज़ होता है। एक एक चीज़ उसमें डाल दें जिंदगी में रहकर। क्यों लोग कहते हैं मरने के बाद किसको दें, अच्छा ये निरी लड़ाइयाँ, जायदाद इज निरी लड़ाई, सगे बहन भाई आपस में एक दूसरे के मुकाबले पे आ जाते हैं, चचा भतीजे दुश्मन हो जाते हैं। उस्मान गनी बंदा जिसने अपना सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में रखा, और एक असूल, आई ओप नथिंग आई ओन नथिंग। जिंदगी में कमी कोई नहीं आनी है आपके, ये मैं बता दूं, लेकिन लाइबिलिटीज खत्म। हम सारी जिंदगी हौका रखते हैं, लाइबिलिटीज में रहते हैं, हौके में रहते हैं। तो उस्माने गनी ने जिंदगी में इतना कुछ किया, और वो हमने फिर कुआं भी देखा जो हजरत उस्माने गनी ने खरीदा, यहूदी का कुआं था, बड़ा महंगा पानी बेचता था। इन्होंने कहा मुझे बेच दो, कहेंगे सरा नहीं बेचूंगा, इन्होंने बोली दी बोली दी बोली दी, वो कहेंगे वाह ये तो बड़ा साहूकार है, कहेंगे अच्छा मैं आधा बेचूंगा, इन्होंने कहा आधा ही दे दो। लोगों ने कहा उस्माने गनी पानी का कुआं इतना महंगा खरीद रहे हैं, कहा कोई बात नहीं आधा ले लिया, एक दिन इनका पानी है तो दूसरे दिन उसका है। जिसे इनका पानी था इन्होंने कहा मदीना का जो बंदा आके ले जाए फ्री, लोग फ्री में अपना भी ले लेते अगले दिन का भी ले लेते। यहूदी वो बेचता था पानी, तो उनके लिए ऐसे ही था ना जैसे आज के दूध ड्रिंक्स, और जब वो दूसरे दिन उसका होता तो कोई लेता ही ना। थोड़े ही दिनों में उसको समझ आ गया कि मेरा तो बिजनेस फ्लॉप होगा, कहने लगा मुझसे बाकी भी खरीद लो। आज भी वो कुआं मौजूद है, और हमने वो भी देखा जिसमें हजरत उस्माने गनी की अंगूठी गिरी, और उसको बेरे खातिम कहते हैं, खत्म अंगूठी को कहते हैं अरबी में ना, खातिम नबीयीन। इनके दौरे खिलाफत में वो अंगूठी गिर गई थी और उसके बाद नहीं मिली। यानी ये हिस्ट्री बड़ी, ये सारा हमारे इस उमरा ट्रिप में हुआ है। जो स्टडी टूर हुए और जो गाइड साथ थे वहाँ के लोकल्स, मदीना यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे जिनको इंग्लिश भी आती थी अरबी भी आती थी, उन्होंने भरपूर किस्म का हमें टूर दिया। उस दिन हम सब की आंखें गीली थी, हमने सिर्फ वॉकिंग एक टूर बस नवे के इर्द गिर्द अंदर ही, यानी उसकी बाउंड्री वॉल के अंदर, ये इस जगह हजरत उस्मान का घर था, यहाँ अबू बकर थे, यहाँ फलां था ये, और आखिर में जब हम नबी के रोजे पे पहुंचे तो हम सब हिचकियों से रो रहे थे। आज की मसल नबी के, सीरत पढ़ने वाला जिसको कुरान से सीरत से, वो तो माजी में खो जाता है, ये बाबे जिब्रील है, यहाँ से जिब्राइल आते थे, ये बाबे अबू बकर है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था सारे दरवाजे मेरे बाद बंद कर दो, अबू बकर के घर का ना बंद हो। वो नेकियां कीजिए जो आपके बाद भी खुले रहे। आज मरे कल दूसरा दिन, कब्र में ही सोना है, क्या पता है आज की रात कहाँ सो। इसी तरह हदीस से पता चलता है कि नबी के दौर में एक औरत रात के वक्त फौत हुई, साहबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दिए बगैर कि आपको तंग करें कि क्या फ़ायदा, दफन कर दिया। तो अगले दिन जब पूछा तो आपने कहा मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ। फिर आपने फरमाया इन हाज़िहिल कुबूर ममलूअतुन ज़लमतुन अला अहलिहा, लहुम बिसोलाती अलैहिम। ये कब्रें लोगों पर तारीक अंधेरों की तरह हैं, अल्लाह ताला इन पर मेरी नमाज जनाजा की वजह से इन्हें मुनव्वर कर देते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 956। तो इससे पता चलता है कि कब्र में अच्छी और बुरी चीज़ दोनों का अलग से होता है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में भी है। इसी तरह अल्लाह के नबी कब्र में नूर की दुआ किया करते थे। आज से अपनी दुआ में एक दुआ शामिल करें, अल्लाह मेरी जब रूह निकले तो या तो हन नफ्सुल मुतमिन्ना के पास है। ये मैंने पिछले लेक्चर के साथ भी शायद दुआ मंगवाई थी, अपने लिए मांगा करें। मौत बड़ी पुरसकून, और जब मेरी कब्र खुदे ना तो उसमें से खुशबू आए। लोग गवाही दें कि बड़ी ठंडी कब्र थी। तो अल्लाह के नबी ने एक सहाबी के जनाजे पर क्या दुआ मांगी थी, आप भी बाद में इसको जब वहाँ स्लाइड्स आएंगी यूट्यूब पे तो इसको आप स्नैप ले के तो याद कर लें। अल्लाहुम्मा अग्फिर ली अबी सलमता वरफा दरजतहू फिल महदीजीन वख्लुफू फी अकीबिही फिल गाबिरीन वाग्फिर लना वलहू या रब्बल आलमीन वाफ्सह लहू फी कब्रिही वनव्विर लहू फी। या अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे, इसका दर्जा हिदायत याफ्ता लोगों में कर दे, इसके लवाहकीन में तू इसका जानशीन बन जाए। या रब्बल आलमीन हमें और उसे बख्श दे और उसकी कब्र को कुशादा कर दे और इसके लिए इसे मुनव्वर कर दे। ये सही मुस्लिम के अल्फाज है 920। तो खुलासा क्या निकला अभी तक का, इंसान की नेकियां उसकी कब्र में नूर और हिसाब किताब में आसानी का जरिया साबित होंगी और उसे अजाब कब्र से बचाएंगी। इंशाल्लाह आगे एक टॉपिक आ रहा है कब्र में नेक आमाल, तो उसमें मजीद बातें भी पता चलेंगी। ये दो तीन चीजें कि कब्र में और क्या होता है। अब डरिएगा नहीं, लेकिन हर बंदे की कब्र उसको दबाती है। कब्र का दबाना हर कब्र दबाती है, हत्ता कि एक सहाबी साक बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि जब इन्हें दफनाया गया तो इनकी कब्र ने इन्हें भी दबा लिया और अल्लाह के नबी ने फरमाया हाजल्लजी तहर्रक लहुल अर्श। ये साद रजी अल्लाह अन्हो ऐसा शख्स है जिसकी वफात पर अल्लाह का अर्श हिल गया, यानी झूम उठा खुशी से। कितना प्यारा बंदा इधर आ रहा है। वफुतिहत लहु अबवाब उस्समाई, और जिसके लिए आसमानों के दरवाजे खुल गए। वशहिदहु सबऊन अल्फ मिनल मलाइकती लकद दम दमतन सुम्मा फुर्रिजा अन्हु। ये सात रजी अल्लाह अन्हु ऐसे शख्स हैं जिनकी वफात पर अल्लाह का अर्श हिल गया, जिनके लिए आसमानों के दरवाजे खुल गए और जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक हुए। इसे भी कब्र ने एक मरतबा दबाया फिर छोड़ दिया। ये निसाई की रिवायत है किताबुल जनाइस 2057। अब ये क्या चक्कर है, तो इसके लिए अगली रिवायत सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन उमर से है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न लिल कब्र दख्तुन लो कान अहदुन नाजिया मिन्हा नजा साद इब्नु मास रजी अल्लाह अन्हो। ये सही जामे सगीर की रिवायत है। बेशक कब्र एक मरतबा दबाती है, अगर किसी ने इससे बचना होता तो सात दिन माँ जरूर बचते। ये क्या बात है। तो उलमा कहते हैं कि कब्र सिर्फ गुनाहगारों को दबाती है। बास कहते हैं कि हजरत सात को कब्र ने सिर्फ इसलिए दबाया था कि एक मरतबा पेशाब की छींटों से बचने में कोई बेख्तियाती हो गई थी। दूसरी राय उलमा की क्या है कि कब्र हर एक को दबाती है, ये जुमला बगला याद रखिएगा, गुनाहगारों को सजा देने के लिए और नेककारों को मोहब्बत से दबाती है, जिस तरह कोई छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार से दबाता है। हम भी कहते हैं ना हग देना है, गले लगाना है। और इसकी रिवायत नबी सल्लम से मिलती है कि एक छोटे बच्चे को कब्र में दफनाया गया तो आपने फरमाया अगर कोई बच्चा कब्र के दबाने से बच सकता तो वो ज़रूर बच जाता। ये रिवायत भी आप देखना चाहें तो सही जामे सगीर में देख सकते हैं। आपका मेरा इस पे क्या अमल हो, अल्लाह से हमेशा ये दुआ करा करें कि वक़्त नाज़ा बनना। बस जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन कब्र दबाती है। देखिए आज आप और मैं आज़ाद हैं, जो चाहें कर लें, कल मुश्किल होगी। फिर अगली चीज जो कब्र के साथ पक्की बात है, कब्र में सवाल लगा होंगे। इंसान के साथ जो कुछ पेश आता है कब्र के बाहर के लोग तो नहीं जान सकते, कब्र खुली भी होगी ना किसी के सामने, फिर भी कोई उसके साथ क्या हो रहा नहीं बता सकता। लेकिन कब्र के सवाल जवाब, हजरत अनस से एक रिवायत, अल्लाह के नबी बनू नज्जार एक कबीला है, उसके खजूर के बाग में गए तो वहां आपने एक आवाज सुनी जिससे आप घबरा गए और परेशान होकर कहा, यहाँ किन लोगों की कब्रें हैं? लोगों ने कहा, ये दौरे जाहिलियत के मरने वालों यानी कुछ लोगों की कब्रें हैं। तो आपने फरमाया, तवज़ु बिल्लाह मिन अज़ाब नार वल कब्री व मिन फितनत दज्जाल, आग या कब्र के अजाब से और दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह कब्र के अजाब से पनाह क्यों मांगे? तो आपने फरमाया, जब बंदा मोमिन को कब्र में दफन किया जाता है तो इसके पास एक फरिश्ता आता है जो इससे पूछता है कि तू किसकी इबादत करता था? अगर तो अल्लाह इसे हिदायत दे दे तो वो कहता है मैं अल्लाह की इबादत करता था। फिर फरिश्ता इसे पूछता है, इस आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है? तो मोमिन आदमी जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। इसके बाद इससे और कोई बात नहीं पूछी जाती और उसे ले जाया जाता है और जहन्नम में घर दिखाया जाता है और कहा जाता है, ये तुम्हारे लिए था लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया, इसके बदले में तुम्हें जन्नत में घर अता किया जाएगा। चुनाचे मोमिन जब इस घर को देखता है तो कहता है, जरा मुझे छोड़ो, मैं अपने घर वालों को खुशखबरी दे आऊं। लेकिन उसे कहा जाता है, नहीं यहीं रुको। ये अबू दाऊद की रिवायत है, सिलसिला तो सखीहा में भी है। आप कभी दुनिया के किसी मुल्क में जाए, बहुत खूबसूरत जगह पे हो ना, तो पहला दिल पता क्या करता है, या लैता कौमी यालमून बीमा गफर अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरम। लोग कहते हैं ना, गम बर्दाश्त नहीं होता, हाय गम में अपने याद आते हैं, मेरा एक बिग क्रॉस है। गम तो छोड़े, किसी को क्यों बताएं, क्योंकि इन नमाज को बस नहीं। लेकिन खुशी अकेले नहीं बर्दाश्त होती, कहते हैं परदेश की खुशियां गम में बदल जाती हैं जब खुशी मनाने वाला साथ कोई ना हो। ईद का दिन सबसे बोरिंग दिन, कोई खुशी मिले आपको तो अपने याद आते हैं। मोमिन को कब्र में इतनी खुशी मिलती है, उसका दिल करता है मैं जाके अपनी फैमिली को बताऊं। आजकल हम क्या करते हैं, वीडियोस बना बना के भेजते हैं, देखो मैं इधर हूँ, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये पढ़ रहे। तो दुआ करें कब्र इतनी प्यारी हो कि वहां जाके दिल करे कि जरा अपने भाई बहनों को बताएं। एक रिवायत और करके इंशाल्लाह बात को पूरा कर लेते हैं। अनस बिन मालिक से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान को कब्र में दफनाने के बाद इसके अहलो याल वापस पलटते हैं तो इनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। फिर इसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठा देते हैं और इससे कहते हैं कि इस शख्स यानी अल्लाह के रसूल के बारे में तुम क्या कहते थे? अगर वो मोमिन होगा तो कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। और अगर वो काफिर या मुनाफिक होगा तो फिर इससे जब ये सवाल किया जाएगा कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते थे, तो वो कहेगा, मैं तो जानता नहीं, ला अदरी, आई डोंट नो, बस मैं तो वैसे ही कहता रहता था जैसे लोग कहते हैं। इस जुमले को नोट कर लें, लोग क्या कहते हैं, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जो लोगों की बोलती थी वही बोलता था। फरिश्ते कहेंगे, ना तूने जानने की कोशिश की और ना समझने वालों की राय पर चला, फिर लोहे के हथौड़ों से इसकी पिटाई की जाएगी और वो चीखे मारेगा जो इंसानों और जिन्नों के अलावा गिरदो नवाह की सारी मखलूक सुनती है। ये भी सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ने, आप देखिए, सारी बातें तो खोल के दे दी, अब इसके बाद अगर आपने मैंने नहीं मानना, आपका मेरा नहीं मान, तो फिर नसीब की बात है। लोग कहते हैं, कहाँ है कुरान में कब्र का जिक्र? तो भाई इतनी बड़ी बड़ी हदीस है, कुरान पाक में कब्र का कितनी जगह जिक्र है। एक और रिवायत में हजरत अबू हुरैरा से मिलता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा कुब्बिरल मैयत, जब मैयत को दफनाया जाता है या किसी की मैयत दफनाई जाती है तो इसके पास दो स्याह रंग के नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं, इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर। दोनों का मतलब पता, अननोन, इनकार, नकीरा, गैर मारूफ, यानी जिनको बंदा पहचानेगा नहीं, नीली आंखें होंगी उनकी। वो पूछ रहे हैं कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो, यानी नबी सल्लम के बारे में, तो वो कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरिश्ते कहते हैं, मैं यकीन था तुम यही कहोगे। फिर उसकी कब्र 70 हाथ चौड़ी कर दी जाती है, उसे मुनव्वर किया जाता है। फरिश्ते कहते हैं, नहीं बल्कि तुम नम का नौ मतिल उरूस, नई नवेली दुल्हन की तरह सो जाओ, जिसे सिर्फ वही उठा सकता है जो उसका महबूब हो, हत्ता के रोजे क्यामत अल्लाह ताला उसे उसी मुकाम यानी कब्र से उठाएंगे। अल्लाह जालना मिनहु, अगर कब्र वाला मुनाफिक हो तो फरिश्तों के जवाब में कहता है जैसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना मैंने भी वैसा कह दिया, असल हकीकत तो मुझे नहीं पता। फरिश्ते कहते हैं हमें पहले ही पता था कि तू यही कहेगा। फिर जमीन को हुक्म दिया जाता है उसे दबा कर भींच दे, और जमीन उसे इस कदर भींचती है आपने यूं दिखाया कि दाई पसलियां बाई में यानी राइट लेफ्ट इसमें, और उसको मुस्तकिल अजाब होता रहता है। और अल्लाह ताला कब्र के हिसाब किताब के वक्त यानी यहाँ से लेके इसी तरह उसको उठाएंगे। ये तिरमिजी की रिवायत है। इसी तरह अबू हुरैरा से रिवायत है कि मुर्दे जब कब्र में दफन किया जाता है उसको तो जूते की आवाज़ सुनता है, और वही बात के जब उसको उठाते हैं तो सूरत गुरूब होता दिखाया जाता है। वो पूछता है जो शख्स तुम्हारे पास आए थे वो कौन है, वो कहता है मुझे जरा पहले असर की नमाज पढ़ने दो, क्योंकि दुनिया में नमाज पढ़ता था। फरिश्ते कहते हैं यकीनन तो दुनिया में नमाज पढ़ता था, जरा हमें इस बात का जवाब तो दे दो ये कौन शख्स थे जिनको मबूस किया गया था। तो वो कहता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी गवाही वो देता है। फिर कहा जाता है तो इसी अकीदे पे जिंदा रहा, अब इसी पे तू मरे हो, इंशाल्लाह कल इसी पे उठाए जाओगे। और जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोला जाता है, कहा जाता है ये तुम्हारा महल है, कैसल शातो और महल, और अल्लाह ने जो चीजें जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार की हैं उसके शौक और लज्जत में इतना इजाफा हो जाता है कि अच्छा मैं कब जाऊंगा उस घर में। और फिर अगर जहन्नम के दरवाजों में से कोई दरवाजा खोला जाए नाफरमानों के लिए तो फिर क्या, उसको वो भी दिखाया जाता है तो उसकी और खुशी हो जाती है कि शुक्र है मैं इस जहन्नम में नहीं गया। फिर कब्र 70 हाथ खोली जाती, मुनव्वर की जाती है, उसके जिस्म को पहले वाली हालत में डाल दिया जाता है यानी सुला दिया जाता है, एक दफा रूह डाली जाती है फिर निकाल ली जाती है, और उसकी रूह को पाकीज़ा और खुशबूदार बना दिया जाता है, और ये परिंदे की शक्ल में जन्नत के दरख्तों पर उड़ती है। तरगीब व तरहीब की रिवायत है। तो आप बताइए कि इतनी प्यारी चीजें जो हैं इनको बंदा कैसे झुठला सकता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान ताला हमारे साथ अच्छा मामला करे, अल्लाह ताला हमें आफियत में रखे। इसे नेक्स्ट टॉपिक यानी इसी कंटिन्यूशन कल होगी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुनिया में ऐसे काम करने की तौफीक दे कि जिसके बाद हम वहाँ अच्छे तरीके से पहुंचे। देखिए इल्म के साथ जो बात होती है ना उसी की को गारंटी है, बाकी तो सिर्फ बातें हैं। छोटी सी दुआ कर लेती हूँ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, अल्लाहुम्मा अस्तुर अवरातिना व आमिर अवातिना। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، امين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللہ اس گھر کو بابرکت کرے اور جو بھی یہاں رہنے والے ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.